आखिरकार इसके रब ने इस लड़की को बखुशी कबूल कर लिया और इसे बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया और जकरिया को इसका सरपरस्त बना दिया। यहां देखिए कि उस औरत ने अपनी नीयत नहीं बदली। लड़कियों को रिवाज नहीं था उस वक्त, लेकिन हजरत मरियम वो खुशकिस्मत औरत है कि जिनकी वजह से यहूद में औरतों को भी मुकाम मिला। उससे पहले औरतों को वो कोई मुकाम नहीं देते थे। अब बाप चूंकि नहीं थे और एक औरत की इज्जत और उसकी हिफाजत के लिए सब क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बच्ची को पालेंगे। जकरिया कौन थे? खालू थे। फरमाए जकरिया अलैहिस्सलाम जब कभी इसके पास मेहराब में जाते तो इसके पास कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान पाते। पूछते, मरियम ये तेरे पास कहाँ से आ गया? वो जवाब देती, अल्लाह के पास से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। ये हाल देखकर जकरिया ने अपने रब को पुकारा, परवरदिगार अपनी कुदरत से मुझे नेक औलाद अता कर, तू ही दुआओं को सुनने वाला है। आइए हम भी ये दुआ मांगते हैं। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। ये दुआएं मांगे। अगर नई नस्ल को दुआओं को मांगने के बाद हासिल किया, इंशाल्लाह अल्लाह ताला पैदाइशी तौर पे बच्चों के अंदर खैर को बढ़ा देगा। फनादतुल मलाइका, जवाब में फरिश्तों ने आवाज दी जबकि वो मेहराब में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह तुझे यहया की खुशखबरी देते हैं। वो अल्लाह की तरफ से एक फरमान की तस्दीक करने वाला बनकर आएगा। इसमें सरदारी और बुजुर्गी की शान होगी, कमाल दर्जे का जाबित होगा, नबूवत से सरफराज होगा और सालेहीन में शुमार किया जाएगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार भला मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा? मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका और मेरी बीवी भांज है। तो मांगा क्यों था? है ना इंसान की कमजोरी, पहले दुआ मांगता है और जब हो जाए कहते हाँ ये कैसे हो गया। जवाब मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है। अर्ज किया, मालिक फिर कोई निशानी मेरे लिए मुकर्रर फरमा दीजिए। कहा, निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारों में बात करोगे, यानी इसके अलावा बात नहीं कर सकोगे। क्यों भाई? क्योंकि अल्लाह की नेमतों का एहसास बंदे मोमिन की जुबान को बंद कर देता है। हमें पता चले इतने साल की उम्र में औलाद होने लगी है। हजरत जकरिया उस वक्त 80-90s में थे, बच्चा नहीं था। बीबी मरियम के बिन मौसम के फल देखे। कहा, अच्छा अल्लाह इसको बिन मौसम का फल दे सकता है, तो औलाद भी तो एक फल ही होती है ना, तो अल्लाह तो मुझे भी बिन मौसम की औलाद दे। ऐसा कबूलियत का वक्त था और उससे पहले इबादत भी हो रही थी, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। तो अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर तो परेशान होते कि 40 के बाद तो बच्चा पैदा ही नहीं करना, पकड़ो इसको अपग्रेड करा दो, ये हैंडीकैप बच्चा होगा। अल्लाह ने इतनी बूढ़ी बीवी को बच्चा दे दिया। आज ये भी एक बड़े मसले हो गए, 30-40 से ऊपर बच्चा पैदा हो पहले ही सोच लेते हैं देखना कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। हालांकि अल्लाह के वादों पर यकीन रख के देखें कि अल्लाह ताला ने कैसे बूढ़े जकरिया को औलाद दी। आगे जाके हम पढ़ेंगे हजरत इब्राहिम को औलाद मिली। तो लिहाजा कहा, जब नेमतें मिलें तो याद करो। हम होते तो बेबी शावर बना रहे होते हैं और पता नहीं क्या कुछ कहते, अच्छा बस अल्ट्रासाउंड से ये पता चल जाए बेटा है कि बेटी है, ब्लू लूँ कि पिंक लूँ। ये मसले आज हमारे गम ये पड़ा हुआ है, पिंक लूँ कि ब्लू लूँ, गुब्बारे लूँ कि फूल लूँ, कि ये क्या करूँ वो करूँ। उन्होंने कहा, अल्लाह जो देना दे दे, मैं तेरा शुक्र करूंगा। इस दौरान मैं अपने रब को बहुत याद करना और सुबह शाम इसकी तस्बीह करते रहना। फिर वो वक्त आया जब मरियम से फरिश्तों ने आकर कहा, है मरियम, अल्लाह ने तुझे पसंदीदा किया और पाकीज़गी अता की और तमाम और दुनिया की औरतों पर तुझको तरजीह देकर अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। ए मरियम, अपने रब की ताबे फरमान बन कर रह और इसके आगे सर बसजूद हो, और जो बंदे इसके हजूर झुकने वाले हैं इनके साथ तू भी झुक जा। यहाँ जरा बीबी मरियम का किरदार एक अनमैरिड कुंवारी बच्ची के तौर पे देखिए। 12-13 साल की अर्ली उम्र थी और अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया। क्यों चुना? क्योंकि मरियम का बचपन पाकीज़ा, उनकी जवानी पाकीज़ा। वो लड़कों की बातें नहीं करती थी, वो लिविंग टुगेदर्स को नहीं जानती थी। जिनकी जिंदगी में ऐसी गंदी करप्शन वाली चीज़ें ही नहीं थी, अल्लाह ने चुन लिया। आज भी जो चुना जाना चाहता है उसको बीबी मरियम की तरह अपने आप को पाकीज़ा रखना होगा। और एक हल्की सी बात कह दूं कि आज वो कौम जो मैरी से निस्बत जोड़ती है, आज उसकी पाकीज़गी और दामन का हाल देख लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे, तन्हाई में फरिश्ते को आता देखकर मरियम कांप उठी, कहने लगी, चले जाओ, तुम मेरे पास क्यों आ गए? आज उसी औरत से निस्बत लेने वाली कौम जब तक किसी का बॉयफ्रेंड उसके साथ ना हो उसको कामयाब औरत ना समझे। ये है वो तजाद जो आज बनी इसराइल यानी क्रिश्चियंस के अंदर भी आपको दिखेगा। नाम से वो खुद को ईसाई कह लें, क्रिश्चियन कह लें, नसारा कह लें, लेकिन अकायद उनके उन जैसे नहीं है। और कौमों पे जवाल जब आता है तो ऐसे ही होता है, नामों की हद तक नबियों से और उनके घर वालों से ताल्लुक रखते हैं। जैसे आज हम बीबी फातिमा का नाम बड़े प्यार से लेते हैं, लेकिन बीबी फातिमा वाला तर्ज अमल हम इख्तियार करने पे जरा थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं जो हम आपको वही के जरिए से बता रहे हैं, वरना आप तो उस वक्त मौजूद भी ना थे जब हैकल के खादिम ये फैसला करने के लिए कि मरियम का सरपरस्त कौन होगा अपने अपने कलम फेंक रहे थे, और ना आप उस वक्त हाजिर थे जब वो झगड़ा कर रहे थे। कितने वाजे तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं कि अल्लाह के नबी आप उस वक्त हाजिर नहीं थे जब ये सारे मामले हो रहे थे। पता क्या चला कि नबी सल्लम को दुनिया में आने से पहले ऐसे हालात की खबर नहीं थी जब तक अल्लाह ताला ने किसी बात को आप तक पेश ना कर दिया। फिर फरमाया, और जब फरिश्तों ने कहा है मरियम अल्लाह तुझे अपने एक फरमान की खुशखबरी देता है, उनका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा, दुनिया और आखिरत में मुअज्जज़ होंगे और अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शुमार किए जाएंगे, लोगों से गहवारे में भी कलाम करेंगे। इनका ये कलाम हम सूरत मरियम में पढ़ेंगे, इन्नी अब्दुल्लाह, कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और लोगों से गहवारे में भी कलाम करेंगे और बड़ी उम्र को पहुंच कर भी। ये कहूलत की उम्र जो इधर लिखी है ना, कहला, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे ये उम्र नहीं आई थी, इससे पहले ही उनको आसमानों पर उठा लिया गया। तो ये हिस्सा इस बात की दलील है कि हजरत ईसा वापस दुनिया में आएंगे और लोगों से बात करेंगे, और वो एक मर्द साले होंगे। ये सुनकर मरियम बोली, परवरदिगार मेरे यहाँ बच्चा कहाँ से होगा, मुझे तो किसी शख्स ने हाथ तक नहीं लगाया, जवाब मिला ऐसा ही होगा, और अल्लाह जो चाहता है वो करता है, और जब किसी काम के करने का फैसला फरमाता है तो बस कहता है कि हो जा, और वो हो जाता है। फरिश्तों ने फिर अपने सिलसिले कलाम में कहा, और अल्लाह इसे किताब व हिकमत की तालीम देगा और तौरात और इंजील का इल्म सिखाएगा, और बनी इसराइल की तरफ अपना रसूल मुकर्रर करेगा, और जब वो बहसियत रसूल बनी इसराइल के पास आए तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे सामने मट्टी से परिंदे की सूरत का एक मुजस्मा बनाता हूँ और इसमें फूंक मारता हूँ, वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाती है, मैं अल्लाह के हुक्म से मादरजा दंदे और कोड़ी को अच्छा करता हूँ, और मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घरों में जखीरा करके रखते हो, इसमें तुम्हारे लिए काफी निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो। आप देखिए कि हजरत ईसा को जो मौजजा दिए गए, आपने देखा कि अक्सर का ताल्लुक तिब से था, क्योंकि उस दौर में तिब का बहुत रिवाज था। किसी भी नबी को वही मौजजा दिए जाते हैं जो उस दौर के लोगों के जहनों पर छाए होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चूंकि इल्म का बहुत रिवाज था, अदब का रिवाज था, तो आपका मौजजा क्या है? कुरान, जिसको आज 1400 साल बाद भी कोई ना बदल सका। तो ये ना सोचिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कोई मौजजात नहीं दिए, आपका मौजजा तो चलता फिरता दुनिया में रहने वाला है। आज आप देखिए कि नसारा जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इन सिफात की वजह से बहुत ज्यादा तिब के रास्ते से लोगों को दीन फैला रहे हैं अपने। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स मिशनरीज ने कायम किए कि जहां वो मरीजों को बुलाते हैं, फ्री खाना देंगे, दवाइयां देंगे, और शुरू में क्या करते हैं, उनको सिर्फ कहते हैं कि ग्लूकोज और इस तरह की बेजरर किस्म की दवाइयां देते हैं। कुछ दिन के बाद जब मरीज ठीक नहीं होता, फिर एक दिन बैठ के वो उसको प्रीच करते हैं। ऐसे ही तुम्हें पता है ना, कुरान में भी ये बात है, हजरत ईसा के पास मौजजात थे, वो बीमारों को ठीक करते थे। तो अगर तुम जीसस का जरा नाम ले लो, यानी ऐसे लफ्ज जो अल्लाह के लिए होने चाहिए जीसस के लिए बुलाते हैं, तो तुम्हें शिफा होगी। वो भोले वाले मुश्किलों में पड़े हुए लोग जब इस चीज को ले लेते हैं तो उसके बाद वो उसको ओरिजिनल दवा दे देते हैं, जब ओरिजिनल दवा दी तो ठीक हो गए, और जब ठीक हो गए तो फिर क्या होता है, उसका माइंड बन जाता है कि अच्छा जीसस का नाम लिया तो शिफा हुई, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इस्लाम से कुफर पे जाते हैं। आप अंदर खाते वो सारी कहानियां पढ़ के देखें जो इस वक्त इस्लाम से लोगों को हटाने के लिए हैं, तो आप खुद इस चीज को समझ जाएंगे कि आज हम मुसलमान तो सो रहे हैं, जिनके पास हक है और जिनके पास कुछ भी नहीं सिर्फ मिथ है, वो दुनिया में कितनी मेहनतों से काम करें। उनकी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, घरों में जो लिटरेचर वो भेजते हैं कितना महंगा और कितनी कोशिशों से, और वो चुन चुन के उन लोगों की कहानियां आप तक काम करते हैं जो पहले मुसलमान थे अब क्रिश्चियन हो गए। वजह क्या है? इसी किस्म की बातें हैं। मेरा और आपका ईमान क्या है कि अगर हजरत ईसा में ये खूबियां थी तो अल्लाह की दी हुई थी, वो उनके साथ थी, और आज दुनिया में अल्लाह ताला ने उनके साथ वो चीजें भी उठा ली। तो ऐसी चीजें कभी भी कहीं सुने तो उसे मुतासर होने की बजाय दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को सलामत रख दे। फिर इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निशानियों में क्या था, और मैं इस तालीम और हिदायत की तस्दीक करने वाला बनकर आया हूँ जो तौरात में से इस वक्त मेरे जमाने में मौजूद है, اور وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، بس تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہاں پھر سمجھ لیجئے، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ بنی اسرائیل کے علماء کے اندر جب دنیا کی محبت بڑھی تو انہوں نے مسائل کو بدل دیا، شریعت کو ایک طرف تو بہت مشکل کر دیا، کیونکہ جب کسی چیز کو اس کی اصل سے ہٹائیں گے یا تو بہت ہارڈ ہو جائے گی یا بہت سافٹ۔ اس کو آپ سوچئے کیک بنانے سے، صحیح ٹیمپریچر پہ صحیح طرح سے چیز رکھتے ہیں تو کیک بہت فلفی بھی بنے گا، اوپر سے بھی پکے گا اندر سے بھی پکے۔ ٹیمپریچر بہت کم کر دیں تو سخت ہو جائے گا کیک، اور اگر بہت بڑھا کے اوپر سے جلا لیں تو اندر سے کچا پانی کا پانی رہے گا۔ یہی دین کی بات ہے، جب دیندار حضرات جو ہوتے ہیں وہ علم میں اپنی مرضیاں کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے اندر یہ عام ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سیم ہے، اللہ کے نبی، بس فرق ہے کہ پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ حضرت عیسیٰ نے آ کر یہودی علماء کی وہ ساری کمی بیشیاں جو انہوں نے اس وقت کے دین میں پہری ہوئی تھی اس کو بدل دیا، اس وجہ سے پھر جیوز ان سے دشمن ہو گئے تھے۔ آگے جا کے اگر موقع ملا اس سفر میں یا آگے تو آپ کو ریزن بھی بتا دوں گی کہ وائی دیو ٹرائی ٹو کل ہم۔ آپ کو پتہ کسی کو تو ہاتھ کھڑا کریں، حضرت عیسیٰ کو کیوں قتل کرنے کی کوشش کی تھی یہود کے علماء نے؟ کیونکہ انہوں نے ان کو سود کا کاروبار کرنے سے روکا تھا اور بیت المقدس میں بیٹھ کر کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو اب ہمارے اکانومی پہ آ گیا، اب ان کو پکڑو۔ وہ کئی اور وجوہات کے ساتھ اس کو وجہ بنا کر ختم کر دیا۔ تو آپ کو بہت ساری مماثلتیں دکھیں گی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ریوائیول آف ریلیجن ہوا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں تذکرہ کیا۔ اب ان کے لیے جو معاملات ہوئے، جو ان کو دنیا سے لے جانے کے لیے کوششیں ہوئیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ فَلَمَّا حَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرُ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں، تو انہوں نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اس کو مان لیا، اور رسول کی پیروی قبول کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور اسی کی طرف سب اشارے ہیں کہ ان کے ساتھ جو حواری تھے ان لوگوں نے پھر ان کا کیسے ساتھ دیا، یا انہی میں سے کسی نے خیانت کی۔ یہ قصہ ڈیٹیل سے پڑھنے والا ہے، اس وقت ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں اس کی، لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ حق کو پیش کرنے میں انبیاء کرام کو اپنی جان تک خطرے میں ڈالنے پڑی۔ اگر آج میں اور آپ اپنے دین اسلام پر عمل کرتے ہیں اور بالفرض اگر اس کی وجہ سے کوئی ہمارے اوپر حالات مشکل ہو بھی جاتے ہیں تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر جمائے رکھے۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ عیسیٰ میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول سے اور ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کر دیا۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے کے پورے دیے جائیں گے، اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ اس سے بھی بڑی کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کوئی دیکھ سکتا ہے کہ لوگ کسی انسان کو قتل کرنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اوپر اٹھا لے؟ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اپنے دین اسلام کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ اگر اللہ تعالیٰ کی ان ساری باتوں پہ نظر رکھتے ہوئے اس پر نظریں لگائے گی تو مدد ہماری ہوگی۔ پیچھے کا مین کنٹرول ہمارے ہاتھ میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کی مدد کب کرتے ہیں؟ جب وہ اس مدد کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ جب ڈیزرو کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرے گا، اور اسی طرح سے دوسرے حالات کی بھی اندر لے کر جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ اس کتاب کو عام کرنا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پھر آخر میں دیکھیے بتا دیا کہ دیکھو یہ قرآن جو تم پڑھنے لگے ہو ये किताब जो इस वक्त तुम्हारी जिंदगियों में आ गई, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये छोटी किताब नहीं है। तुम इस वक्त कोई आम सी चीज नहीं पढ़ रहे। ये दुनिया का इल्म नहीं है कि जिसके लिए तुम सोचो कि मुझे पढ़ना है कि नहीं, कोई ऑप्शन है, कोई चॉइस है कि नहीं, बल्कि ये क्या है, अगली आयतों में देखिएगा। ये आयत और हिकमत से लबरेज तस्करे हैं जो हम आपको सुना रहे हैं। अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम की सी है कि अल्लाह ने इसे मट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कि हो जा, और वो हो गया। यानी ईसा को अल्लाह का बेटा क्यों कहते हैं नाउस बिला, क्योंकि हजरत ईसा बिन बाप के पैदा हुए थे। तो सवाल पैदा होता है कि फिर हजरत आदम के बारे में क्या ख्याल है, उनकी तो माँ भी नहीं थी। इसी तरह देखिए कि हजरत ईसा को इसलिए अगर पूछते हैं कि हजरत ईसा बेजान को जानदार में पैदा करते थे, तो हजरत मूसा को भी पूजे, क्योंकि उनका भी बेजान ऐसा जो था, वो जब हाथ में लेते या पकड़ते या फेंकते तो वो चलते फिरते सांप में बदल जाता। तो बात यह है कि हक से जब लोग पलटते हैं तो वो इसी किस्म की बातें रख लेते हैं। फरमाया अल्हक को मैं रब्बी का फला तकुम मिनल मुमतरीन, ये असल हकीकत है जो आपके रब की तरफ से बताई जा रही है, और आप इन लोगों में शामिल ना हो जो इसमें शक करते हैं। ये इल्म जाने के बाद अब जो कोई मामले में तुमसे झगड़ा करें तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो, क्या हम और तुम खुद भी आ जाएं और अपने अपने बाल बच्चों को भी ले आएं, और अल्लाह से दुआ करें कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। इन्नहा ज़लहुल क़ससुल हक, ये बिल्कुल सही वाक़यात हैं। कौन से? ये सब हजरत ईसा से रेलेवेंट जो पढ़े। अब जिसको इंजील पढ़ने का शौक है उसको कुरान में आ गई ना वो बातें, यही कुछ तो अगर पढ़ना था सच तो उसमें पढ़ सकते थे। और हकीकत यह कि अल्लाह के सिवा कोई खुदावंद नहीं, और वो अल्लाह ही की हस्ती है जिसकी ताकत सबसे बालातर और जिसकी हिकमत निजाम आलम में कार फरमा है। बस अगर ये लोग इस शर्त पर मुकाबले में आने से मुंह मोड़े तो इनका मुफसिद होना साफ खुल जाएगा, और अल्लाह ताला तो मुफसिदों के हाल से वाकिफ है। यहाँ पे अब इनका किस्सा थोड़ा सा पूरा हुआ।